ये भारत भूमि बड़ी ही पवित्र भूमि है, बड़ी ही पावन भूमि है। एक समय था जबकि महान संस्कृति वाले इस देश में सभी नर नारी, पशु पक्षी, यहाँ तक के प्रकृति भी सतो प्रधान थी। सुख शांति आनंद की अपार संपदा से देश भरपूर था। संसार में इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ आचार विचार और संस्कारों के निर्माण के लिए कई पंथ बने। लोगों ने आस्था और विश्वास के लिए अनेक मार्ग बनाए और उस पवित्रता, शांति और आनंद के स्रोत को मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में और गुरुद्वारों में बड़ी भावना और प्यार से ढूंढते रहे। परंतु आज ऐसा लगता है जैसे बहुत ही अंतर आ गया है। अनेक संत गुरु ज्ञानियों के होते हुए भी मनुष्य भटक रहा है। मनुष्य ईश्वर को याद भी करता है तो अल्पकाल के स्वार्थ के लिए, और इसलिए मनुष्य पतन की ओर जा रहा है। धर्म जो मनुष्य को जोड़ते थे, आज उसके नाम पर स्वार्थ वृद्धि हो रही है, दंगे फसाद हो रहे हैं, लोग हिंसक हो रहे हैं, समाज में भय, चिंता व घोर निराशा बढ़ती जा रही है। ऐसे में मनुष्यों का आत्मविकास कैसे हो, ये बहुत गहन प्रश्न है। प्रार्थना, बंदगी, अरदास, पूजा सब कुछ तो हो रहा है। गुरु गोसाई, सूफी संतों ने ईश्वर का रास्ता बताने की कोशिश भी की, फिर भी आत्मा को परमात्मा की निकटता व रूहों को खुदा का एहसास नहीं हो रहा है। मनुष्य विषय सागर की दलदल में इस तरह फंसा है कि वो त्राहि त्राहि कर रहा है। बार बार उसके मन में यही प्रश्न उभरता है कि अब इस दलदल से कौन निकालेगा। तब सभी आत्माओं के पिता, जो दया और करुणा के सागर है, जो सूर्य चंद्र तारा गणों से भी पार, बहुत दूर दूर आवाज की दुनिया से परे, उस लाल सुनहरी दुनिया में रहने वाले सर्वशक्तिमान सर्व मनुष्यात्माओं के पिता परमात्मा, जिनका स्वरूप ज्योतिर्बिंदु है, वो परम पिता अपने मीठे बच्चों को आत्मज्ञान देने के लिए व दुखों से उबारने के लिए, अपनी दया करुणा बरसाने के लिए अपने वचन अनुसार धरती पर अवतरित होते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
निजानन स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। हे मेरे मीठे मीठे रूहानी बच्चों, मैं इस वसुधा पर अवतरित हो चुका हूं। ज्योति हूं, मेरा स्वरूप अति सूक्ष्म बिंदु के समान है जिसे तुम स्थूल नेत्रों से देख नहीं सकते। मेरा नाम शिव है, तुम मुझे ही अनेक नामों से याद करते हो। मैं शांति धाम में निवास करता हूं जिसे तुम मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, परम धाम कहते हो। यहां सर्वत्र शांति ही शांति है। तुम सब भी मेरी तरह सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु हो। एक समय था जब तुम मेरे साथ वहां निवास करते थे, फिर तुमने इस संसार में आकर शरीर धारण किया और वहां से तुम्हारे जीवन यात्रा प्रारंभ हुई। धीरे धीरे सांसारिक होकर तुम अपने वास्तविक रूप को और घर को पूरी तरह से भूल गए। जब तुम दुखी होते हो तो मुझे याद करते हो और सुख में भूल जाते हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलता। मैं पुनः अवतरित हुआ हूं तुम्हें वो सब कुछ याद दिलाने के लिए जिसे तुम भूल चुके हो। मैं फिर से तुम्हें समय के महत्व को बतलाने और जीवन के रहस्य को समझाने आया हूं। ये वही विश्व परिवर्तन की बेला है। मैं तुम्हें दुख अशांति से मुक्त कर सुख शांति व समृद्धि के साम्राज्य का मालिक बनाने आया हूं। हे मेरे प्यारे बच्चों, अब मुझे जानो। मैं ही तुम्हारा अविनाशी पिता हूं। अब मुझे पहचानो और मुझसे सुख शांति और समृद्धि का वर्षा पालो। सुवर्ण युग का सूर्योदय आपका इंतजार कर रहा है।
समय की पुकार सर्व समस्याओं का समाधान एवं दिव्य औषधि है। काल पुरानी बातें समय बीतने के साथ साथ विस्मृत हो जाती हैं और नई बातें आ जाती हैं। कालचक्र बदलता ही रहता है। सदा घूमने वाला यह कालचक्र हमें कहां लेकर जा रहा है? इसके जवाब के लिए ही हम युग युग से प्रतीक्षा करते आ रहे हैं। तो अब समय कितना हुआ है? हम आपके हाथ में बनी हुई घड़ी की बात नहीं कर रहे हैं, इस विश्व के समय को दिखाने वाली विश्व घड़ी की बात कर रहे हैं। यह देखिए, अब हम कौन से युग में हैं? विश्व की घड़ी हमें क्या बता रही है? एक समय था जहां पवित्रता, सुख, शांति एवं संपन्नता से परिपूर्ण सतयुगी सृष्टि थी। इस स्वर्णिम युग में मनुष्य देवी देवता थे। स्वर्ग, वैकुंठ, हेवन, पैराडाइज के नाम से पुकारते थे। उसके बाद आया त्रेता युग अर्थात रजत युग। त्रेता युग के बाद ये धरती देवलोक से परिवर्तित होकर मनुष्य लोक बन गई। यह युग था द्वापर युग अर्थात ताम्र युग। इस युग में मनुष्य अपना सदाचार खो बैठा। फलस्वरूप इस धरती पर दुख और अशांति बढ़ती गई। सुख और शांति के लिए अनेक मत, धर्म और संप्रदाय प्रारंभ हुए। भक्ति भाव बढ़ता गया। वर्तमान समय हम कौन से युग में जी रहे हैं? अभी हम कलयुग अर्थात लौह युग में जी रहे हैं, जहां चारों तरफ दुख, अशांति, दरिद्रता, द्वेष एवं ईर्ष्या बढ़ती जा रही है। राष्ट्रवाद, सामुदायिकवाद, अमीरी गरीबी एवं अनेक मतों में आए परिवर्तन ने जीवन जीना ही मुश्किल कर दिया है। इस तरह असहाय मनुष्य का मन ईश्वर की ओर लग जाता है। फिर धीरे धीरे मनुष्यों को ही ईश्वर के रूप में पूजते हैं। इसके अलावा धरती, जल, अग्नि जैसे प्राकृतिक तत्वों को भी ईश्वर समझकर पूजने लगते हैं। इन सब दुखों से आखिर कब मुक्ति मिलेगी? यही हर एक मनुष्य के दिल की आवाज है। इस विश्व घड़ी की सुई प्रत्येक क्षण आगे बढ़ती जा रही है और अब यह सुई कलयुग के अंतिम क्षणों की ओर इशारा कर रही है। अब हम कलयुग के अंत और सतयुग के आदि पुरुषोत्तम संगम युग पर खड़े हैं। अंधकारमयी इस रात्रि के बाद सुनहरी शुभा का यह शुभ समय है। यह कालचक्र हमें बता रहा है कि हम चार युगों वाले 5000 वर्ष के एक कल्प को पूरा कर चुके हैं। इस कल्प के बाद अब नया कल्प अर्थात नया स्वर्णिम काल फिर से आने वाला है। उसकी स्थापना कैसे होगी? यही वो समय है परमात्मा इस अज्ञान अंधकार को मिटाकर ज्ञान प्रकाश फैलाते हैं। क्या आपका मन भी यही कहता है कि ईश्वर का अवतरण होगा? ईश्वर का अवतरण होगा ही नहीं, बल्कि ईश्वर तो प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित हो चुके हैं। यह अवतरण आडंबर युक्त न होकर आश्चर्यजनक एवं गुप्त है। आप माने या ना माने, लेकिन यह विचित्र किंतु सत्य घटना है। यह समय मनुष्य से देवता बनने का है, इस वास्तविकता को हमें स्वीकार करना होगा। क्या मनुष्य देवता बन सकते हैं? हाँ हाँ, जरूर, क्यों नहीं। ऐसे ही श्रेष्ठ परिवर्तन के लिए तो परमात्मा का अवतरण हुआ है। परमात्मा के अवतरण का यही उद्देश्य है और यही हमारे लिए वरदान भी है। यदि मनुष्य अपने जीवन में पवित्रता, सत्यता, स्नेह, शांति जैसी दिव्य गुणों को धारण करते हैं तो यह दुनिया अवश्य बदल जाएगी। इसके लिए हमें स्वयं को अविनाशी चैतन्य आत्मा समझना होगा। स्वयं को आत्मा समझकर इस शरीर को चलाना है। इस अभ्यास के लिए स्वयं परमपिता परमात्मा हमें दिव्य ज्ञान एवं राजयोग सिखा रहे हैं। मन को नियंत्रण करने की ऊर्जा एवं शक्ति नियमित राजयोग के अभ्यास से ही प्राप्त होगी। क्या आप इस ध्यान को सहज अपना सकते हैं? क्यों नहीं। सर्वप्रथम मैं कौन हूं इस सत्य को जानना होगा। स्वयं को शरीर समझने से धर्म भेद, जाति भेद, भाषा भेद एवं राज्य भेद के कारण मनुष्य विभाजित हो गए हैं। वास्तव में हम यह शरीर नहीं किंतु इसे चलाने वाले एक प्रकाश बिंदु आत्मा है। इस सत्य को हमें समझना है। भूले हुए आत्मबोध एवं दिव्य गुणों को फिर से याद करने से हमारी बुद्धि दिव्य बन जाती है। स्वयं परमपिता परमात्मा हमें ज्ञान रत्नों से सजाकर भूले हुए दिव्य गुणों की याद दिला रहे हैं। इतना ही नहीं, स्वयं ईश्वर आकर हमारे बीच के टूटे हुए संबंधों को जोड़ रहे हैं। ईश्वर हमारे माता पिता हैं, इसलिए हम उनकी महिमा में गाते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। एक बच्चे के लिए अपने माता पिता को याद करना कितना सहज है। सिर्फ नाम मात्र नहीं, उन्हें यथार्थ रूप में जानकर अंतर मन से स्नेह पूर्वक याद करने एवं उनके अगाध प्यार में डूबने से अपना जन्मसिद्ध अधिकार स्वर्ग के रूप में इसी संगम युग पर प्राप्त कर सकते हैं। यही वह समय है। मन और बुद्धि के द्वारा ईश्वर से संबंध जोड़ना ही राजयोग है। आखिर ईश्वर कौन है, कहां रहते हैं, क्या करते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर जानना अनिवार्य है। क्या आप भी इसे आवश्यक समझते हैं? इन प्रश्नों के जवाब देने के लिए स्वयं परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर कहते हैं,
मेरे अति लाडले बच्चों, तुमने मुझे ईश्वर, अल्लाह, शिव, यहोवा के नाम से पुकारा। तुमने मेरे नाम से मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद एवं गुरुद्वारे बनाए। धर्म पिताओं एवं गुरुओं ने मुझे प्राप्त करने के लिए अनेक रास्ते बताए। कई वेदों, शास्त्रों एवं पुराणों की रचना की। तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए अनेकों तप, प्रार्थना, आराधना एवं दान पुण्य किए। मेरे नाम से अनेक युद्ध भी किए, फिर भी मुझे प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि तुम मेरे निज स्वरूप को नहीं जानते हो। सर्व दुखों और अशांति को समाप्त कर सत्युग की स्थापना के लिए काल चक्र की गति के अनुसार मैं इस धरती पर अवतरित हो चुका हूँ। मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। तुम मुझे इन जन्म चक्षुओं से नहीं देख सकते हो। मैं तुम्हारी तरह जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूँ, इसलिए मेरा अपना कोई शरीर नहीं। मैं सदा सबका कल्याण करने वाला हूँ, इसलिए मुझे सदा शिव कहते हैं। सूर्य, चांद एवं तारा गणों के भी पार स्वर्ण लाल प्रकाश में दुनिया ही मेरा निवास स्थान है। इसे ब्रह्मांड, शांति धाम, आत्मलोक, मुक्ति धाम के नाम से जानते हैं। तुम भी बिंदु रूप में मेरे साथ साथ परम धाम में रहते थे। फिर तुम इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर शरीर का आधार लेकर पाठ बजाने आते हो। समय बीतने के साथ साथ तुम मुझे और अपने घर को भूल जाते हो। देह भान में विकारों के वशीभूत होकर तुम अपनी आत्मिक शक्तियां, सुख, शांति सब गवां बैठते हो। अब मैं तुम्हें इस देह के भान से मुक्त कर स्नेह, शांति, आनंद से भरपूर एक नई दुनिया की सौगात देने आया हूं। मेरे वास्तविक स्वरूप को जानकर, मेरी मत पर चलकर अनेक जन्मों के लिए सुख संपन्न मैं जीवन बनाऊं। मेरे प्रिय वत्सल, अब बहुत ही जल्दी संपूर्ण सुख शांति इस धरती पर आने वाली है। फिर यह सुख शांति लंबे समय तक चलेगी।
यदि आप भी ऐसी संपूर्ण सुख शांतिमय दुनिया में आना चाहते हैं, तो स्थानीय ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
बड़ी ही पवित्र भूमि है, बड़ी ही पावन भूमि है। एक समय था जबकि महान संस्कृति वाले इस देश में सभी नर नारी, पशु पक्षी, यहाँ तक के प्रकृति भी सतोप्रधान थी। सुख शांति आनंद की अपार संपदा से देश भरपूर था। संसार में इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ आचार विचार और संस्कारों के निर्माण के लिए कई पंथ बने। लोगों ने आस्था और विश्वास के लिए अनेक मार्ग बनाए और उस पवित्रता, शांति और आनंद के स्रोत को मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में और गुरुद्वारों में बड़ी भावना और प्यार से ढूंढते रहे। परंतु आज ऐसा लगता है जैसे बहुत ही अंतर आ गया है। अनेक संत गुरु ज्ञानियों के होते हुए भी मनुष्य भटक रहा है। मनुष्य ईश्वर को याद भी करता है तो अल्पकाल के स्वार्थ के लिए, और इसलिए मनुष्य पतन की ओर जा रहा है। धर्म जो मनुष्य को जोड़ते थे, आज उसके नाम पर स्वार्थ वृद्धि हो रही है, दंगे फसाद हो रहे हैं, लोग हिंसक हो रहे हैं, समाज में भय, चिंता व घोर निराशा बढ़ती जा रही है। ऐसे में मनुष्यों का आत्मविकास कैसे हो, ये बहुत गहन प्रश्न है। प्रार्थना, बंदगी, अरदास, पूजा सब कुछ तो हो रहा है। गुरु गोसाई, सूफी संतों ने ईश्वर का रास्ता बताने की कोशिश भी की, फिर भी आत्मा को परमात्मा की निकटता व रूहों को खुदा का एहसास नहीं हो रहा है। मनुष्य विषय सागर की दलदल में इस तरह फंसा है कि वो त्राही त्राही कर रहा है। बार बार उसके मन में यही प्रश्न उभरता है कि अब इस दलदल से कौन निकालेगा। तब सभी आत्माओं के पिता, जो दया और करुणा के सागर है, जो सूर्य चंद्र तारा गणों से भी पार, बहुत दूर दूर आवाज की दुनिया से परे, उस लाल सुनहरी दुनिया में रहने वाले सर्वशक्तिमान सर्व मनुष्यात्माओं के पिता परमात्मा, जिनका स्वरूप ज्योतिर्बिंदु है, वो परम पिता अपने मीठे बच्चों को आत्मज्ञान देने के लिए व दुखों से उबारने के लिए, अपनी दया करुणा बरसाने के लिए अपने वचन अनुसार धरती पर अवतरित होते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
निजानं स्वरूपं शिवोहं शिवोहं, ज्ञानस्वरूपं शिवोहं शिवोहं, प्रकाशस्वरूपं शिवोहं शिवोहं। हे मेरे मीठे मीठे रूहानी बच्चों, मैं इस वसुधा पर अवतरित हो चुका हूं। मैं एक ज्योति हूं, मेरा स्वरूप अति सूक्ष्म बिंदु के समान है, जिसे तुम स्थूल नेत्रों से देख नहीं सकते। मेरा नाम शिव है, तुम मुझे ही अनेक नामों से याद करते हो। मैं शांति धाम में निवास करता हूं, जिसे तुम मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, परम धाम कहते हो, जहां सर्वत्र शांति ही शांति है। तुम सब भी मेरी तरह सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु हो। एक समय था जब तुम मेरे साथ वहां निवास करते थे, फिर तुमने इस संसार में आकर शरीर धारण किया और वहां से तुम्हारी जीवन यात्रा प्रारंभ हुई। धीरे धीरे सांसारिक होकर तुम अपने वास्तविक रूप को और घर को पूरी तरह से भूल गए। जब तुम दुखी होते हो तो मुझे याद करते हो और सुख में भूल जाते हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलता। मैं पुनः अवतरित हुआ हूं तुम्हें वो सब कुछ याद दिलाने के लिए जिसे तुम भूल चुके हो। मैं फिर से तुम्हें समय के महत्व को बतलाने और जीवन के रहस्य को समझाने आया हूं। ये वही विश्व परिवर्तन की बेला है। मैं तुम्हें दुख अशांति से मुक्त कर सुख शांति व समृद्धि के साम्राज्य का मालिक बनाने आया हूं। हे मेरे प्यारे बच्चों, अब मुझे जानो। मैं ही तुम्हारा अविनाशी पिता हूं। अब मुझे पहचानो और मुझसे सुख शांति और समृद्धि का वर्षा पालो। सुवर्ण युग का सूर्योदय आपका इंतजार कर रहा है।
यदि आप भी ऐसी संपूर्ण सुख शांतिमय दुनिया में आना चाहते हैं तो स्थानीय ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। केवल राजयोग के द्वारा ही संपूर्ण विश्व में सुख शांति की स्थापना होगी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
समय की पुकार सर्व समस्याओं का समाधान एवं दिव्य औषधि है काल। पुरानी बातें समय बीतने के साथ साथ विस्मृत हो जाती हैं और नई बातें आ जाती हैं। काल चक्र बदलता ही रहता है। सदा घूमने वाला यह काल चक्र हमें कहां लेकर जा रहा है? इसके जवाब के लिए ही हम युग युग से प्रतीक्षा करते आ रहे हैं। तो अब समय कितना हुआ है? हम आपके हाथ में बनी हुई घड़ी की बात नहीं कर रहे हैं, इस विश्व के समय को दिखाने वाली विश्व घड़ी की बात कर रहे हैं। यह देखिए, अब हम कौन से युग में हैं? विश्व की घड़ी हमें क्या बता रही है? एक समय था जहां पवित्रता, सुख, शांति एवं संपन्नता से परिपूर्ण सतयुगी सृष्टि थी। इस स्वर्णिम युग में मनुष्य देवी देवता थे। स्वर्ग, वैकुंठ, हेवन, पैराडाइज के नाम से पुकारते थे। उसके बाद आया त्रेता युग, अर्थात रजत युग। त्रेता युग के बाद ये धरती देवलोक से परिवर्तित होकर मनुष्य लोक बन गई। यह युग था द्वापर युग, अर्थात ताम्र युग। इस युग में मनुष्य अपना सदाचार खो बैठा। फलस्वरूप इस धरती पर दुख और अशांति बढ़ती गई। सुख और शांति के लिए अनेक मत, धर्म और संप्रदाय प्रारंभ हुए। भक्ति भाव बढ़ता गया। वर्तमान समय हम कौन से युग में जी रहे हैं? अभी हम कलयुग अर्थात लौह युग में जी रहे हैं, जहां चारों तरफ दुख, अशांति, दरिद्रता, द्वेष एवं ईर्ष्या बढ़ती जा रही है। राष्ट्रवाद, सामुदायिकवाद, अमीरी गरीबी एवं अनेक मतों में आए परिवर्तन ने जीवन जीना ही मुश्किल कर दिया है। इस तरह असहाय मनुष्य का मन ईश्वर की ओर लग जाता है। फिर धीरे धीरे मनुष्यों को ही ईश्वर के रूप में पूजते हैं। इसके अलावा धरती, जल, अग्नि जैसे प्राकृतिक तत्वों को भी ईश्वर समझकर पूजने लगते हैं। इन सब दुखों से आखिर कब मुक्ति मिलेगी? यही हर एक मनुष्य के दिल की आवाज है। इस विश्व घड़ी की सुई प्रत्येक क्षण आगे बढ़ती जा रही है और अब यह सुई कलयुग के अंतिम क्षणों की ओर इशारा कर रही है। अब हम कलयुग के अंत और सतयुग के आदि पुरुषोत्तम संगम युग पर खड़े हैं। अंधकार मई इस रात्रि के बाद सुनहरी शुभा का यह शुभ समय है। यह काल चक्र हमें बता रहा है कि हम चार युगों वाले 5000 वर्ष के एक कल्प को पूरा कर चुके हैं। इस कल्प के बाद अब नया कल्प अर्थात नया स्वर्णिम काल फिर से आने वाला है। उसकी स्थापना कैसे होगी? यही वो समय है परमात्मा इस अज्ञान अंधकार को मिटाकर ज्ञान प्रकाश फैलाते हैं। क्या आपका मन भी यही कहता है कि ईश्वर का अवतरण होगा? ईश्वर का अवतरण होगा ही नहीं, बल्कि ईश्वर तो प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित हो चुके हैं। यह अवतरण आडंबर युक्त न होकर आश्चर्यजनक एवं गुप्त है। आप माने या ना माने, लेकिन यह विचित्र किंतु सत्य घटना है। यह समय मनुष्य से देवता बनने का है। इस वास्तविकता को हमें स्वीकार करना होगा। क्या मनुष्य देवता बन सकते हैं? हाँ हाँ, जरूर, क्यों नहीं। ऐसे ही श्रेष्ठ परिवर्तन के लिए तो परमात्मा का अवतरण हुआ है। परमात्मा के अवतरण का यही उद्देश्य है और यही हमारे लिए वरदान भी है।
यदि मनुष्य अपने जीवन में सत्यता, पवित्रता, स्नेह, शांति जैसे दिव्य गुणों को धारण करते हैं तो यह दुनिया अवश्य बदल जाएगी। इसके लिए हमें स्वयं को अविनाशी चैतन्य आत्मा समझना होगा। स्वयं को आत्मा समझकर इस शरीर को चलाना है। इस अभ्यास के लिए स्वयं परमपिता परमात्मा हमें दिव्य ज्ञान एवं राजयोग सिखा रहे हैं। मन को नियंत्रण करने की ऊर्जा एवं शक्ति नियमित राजयोग के अभ्यास से ही प्राप्त होगी। क्या आप इस ध्यान को सहज अपना सकते हैं? क्यों नहीं, सर्वप्रथम मैं कौन हूं इस सत्य को जानना होगा। हम इस शरीर के द्वारा कर्म करने वाले चैतन्य आत्मा हैं। स्वयं को शरीर समझने से धर्म भेद, जाति भेद, भाषा भेद एवं राज्य भेद के कारण मनुष्य विभाजित हो गए हैं। वास्तव में हम यह शरीर नहीं किंतु इसे चलाने वाले एक प्रकाश बिंदु आत्मा है। इस सत्य को हमें समझना है। भूले हुए आत्मबोध एवं दिव्य गुणों को फिर से याद करने से हमारी बुद्धि दिव्य बन जाती है। स्वयं परमपिता परमात्मा हमें ज्ञान रत्नों से सजाकर भूले हुए दिव्य गुणों की याद दिला रहे हैं। कितना ही नहीं, स्वयं ईश्वर आकर हमारे बीच के टूटे हुए संबंधों को जोड़ रहे हैं। ईश्वर हमारे माता पिता हैं, इसलिए हम उनकी महिमा में गाते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। एक बच्चे के लिए अपने माता पिता को याद करना कितना सहज है। सिर्फ नाम मात्र नहीं, उन्हें यथार्थ रूप में जानकर अंतर मन से स्नेह पूर्वक याद करने एवं उनके अगाध प्यार में डूबने से अपना जन्मसिद्ध अधिकार स्वर्ग के रूप में इसी संगम युग पर प्राप्त कर सकते हैं। यही वह समय है, यही वह समय है। मन और बुद्धि के द्वारा ईश्वर से संबंध जोड़ना ही राजयोग है। आखिर ईश्वर कौन है, कहां रहते हैं, क्या करते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर जानना अनिवार्य है। क्या आप भी इसे आवश्यक समझते हैं? इन प्रश्नों के जवाब देने के लिए स्वयं परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर कहते हैं,
मेरे अति लाडले बच्चों, तुमने मुझे ईश्वर, अल्लाह, शिव, यहोवा के नाम से पुकारा। तुमने मेरे नाम से मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद एवं गुरुद्वारे बनाए। धर्म पिताओं एवं गुरुओं ने मुझे प्राप्त करने के लिए अनेक रास्ते बताए। कई वेदों, शास्त्रों एवं पुराणों की रचना की। तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए अनेकों तप, प्रार्थना, आराधना एवं दान पुण्य किए। मेरे नाम से अनेक युद्ध भी किए, फिर भी मुझे प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि तुम मेरे निज स्वरूप को नहीं जानते हो। सर्व दुखों और अशांति को समाप्त कर सत्युग की स्थापना के लिए काल चक्र की गति के अनुसार मैं इस धरती पर अवतरित हो चुका हूं। मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप हूं।
तुम मुझे इन जन्म चक्षुओं से नहीं देख सकते हो, मैं तुम्हारी तरह जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूं, इसलिए मेरा अपना कोई शरीर नहीं, मैं सदा सबका कल्याण करने वाला हूं, इसलिए मुझे सदा शिव कहते हैं। सूर्य चांद एवं तारा गणों के भी पार स्वर्ण लाल प्रकाश में दुनिया ही मेरा निवास स्थान है। इसे ब्रह्मांड, शांति धाम, आत्मलोक, मुक्ति धाम के नाम से जानते हैं। तुम ही बिंदु रूप में मेरे साथ साथ परम धाम में रहते थे, फिर तुम इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर शरीर का आधार लेकर पाठ बजाने आते हो। समय बीतने के साथ साथ तुम मुझे और अपने घर को भूल जाते हो। देहभान में विकारों के वशीभूत होकर तुम अपनी आत्मिक शक्तियां, सुख, शांति सब गंवा बैठते हो। अब मैं तुम्हें इस देह के भान से मुक्त कर स्नेह, शांति, आनंद से भरपूर एक नई दुनिया की सौगात देने आया हूं। मेरे वास्तविक स्वरूप को जानकर, मेरे मत पर चलकर अनेक जन्मों के लिए सुख संपन्न मैं जीवन बनाओ। मेरी प्रिय वत्सों, अब बहुत ही जल्दी संपूर्ण सुख शांति इस धरती पर आने वाली है, फिर यह सुख शांति लंबे समय तक चलेगी।
यदि आप भी ऐसी संपूर्ण सुख शांतिमयी दुनिया में आना चाहते हैं तो स्थानीय ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। केवल राजयोग के द्वारा ही संपूर्ण विश्व में सुख शांति की स्थापना होगी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।